नमस्कार। आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतरने वाले हैं जो किसी पुरानी जानी पहचानी कहानी की नींव पर एक बिल्कुल नई और कह सकते हैं झकझोर देने वाली इमारत खड़ी करता है। हम बात कर रहे हैं पर्सिवल एवरेट के 2024 में प्रकाशित उपन्यास जेम्स की।
और ये नाम जेम्स अपने आप में ही घोषणा जैसा लगता है ना, एक ऐलान, क्योंकि ज्यादातर दुनिया इस किरदार को मार्क ट्वेन के क्लासिक एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन से जिम के नाम से जानती है।
हाँ, जिम एक भगोड़ा दास जो कहानी में एक सहायक किरदार जैसा है।
बिल्कुल, लेकिन एवरेट यहाँ एक बहुत ही बहुत जरूरी सवाल पूछ रहे हैं।
क्या सवाल?
कि क्या होता है जब कहानी का वो पात्र जिसे साइड में धकेल दिया गया था अपनी कहानी खुद सुनाने के लिए सेंटर स्टेज पर आ खड़ा होता है।
अच्छा, तो ये उपन्यास सिर्फ कहानी को दोबारा कहना नहीं है, ये तो एक तरह से एक सुधार है।
हाँ, ये पुरानी कहानी में जो एक कमी थी, जो गलती थी, उसे सुधारने की एक जबरदस्त कोशिश है, एक साहित्यिक जवाब है आप कह सकते हैं।
तो चलिए इस जवाब की परतों को खोलते हैं। कहानी हमें कहाँ ले जाती है?
कहानी हमें गृह युद्ध से ठीक पहले के मिसूरी में ले जाती है। यहाँ हम जेम्स से मिलते हैं जो एक दास है और मिस वॉटसन के घर पर काम करता है। और मिलते ही एवरेट हमें एक चौंकाने वाली सच्चाई दिखाते हैं।
हाँ, क्योंकि यहाँ एक नहीं दो जेम्स हैं।
बिल्कुल, एक वो जिसे सफेद दुनिया जिम के नाम से जानती है,
एक भोला अंधविश्वासी आदमी जो टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता है, जिसे देखकर लगता है कि उसे दुनिया की कोई खास समझ नहीं है।
हाँ, ये एक मुखौटा है, एक किरदार जो उसे जिंदा रहने के लिए हर रोज हर पल निभाना पड़ता है।
और फिर दूसरा जेम्स कौन है?
और फिर है असली जेम्स, जब वो अपने लोगों के बीच होता है अपनी पत्नी और बेटी के साथ, तो ये मुखौटा उतर जाता है। तब हम एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जो बहुत पढ़ा लिखा है, जिसकी भाषा एकदम साफ और गहरी है, जो रात के अंधेरे में छिपकर वोल्टेयर और जॉन लॉक जैसे दार्शनिकों को पढ़ता है।
मतलब वो इन दार्शनिकों को सिर्फ पढ़ता नहीं है?
नहीं, वो उनपे अपने साथी दासों के साथ बहस करता है। वो एक ऐसा किरदार है जिसकी बुद्धि शायद उस उपन्यास के किसी भी दूसरे कैरेक्टर से कहीं ज्यादा तेज है।
ये जो भाषा का फर्क है, ये सिर्फ एक लिखने का तरीका नहीं है, ये तो उसके जीने का तरीका है।
बिल्कुल, उसका अपनी असल भाषा में सोचना, बात करना, वो उसकी आज़ादी का एक गुप्त कोना है। बाहर की दुनिया के लिए उसकी टूटी फूटी भाषा एक एक कवच की तरह है।
जो उसे खतरों से बचाता है, क्योंकि उस समाज में एक बुद्धिमान अश्वेत व्यक्ति को ही सबसे बड़ा खतरा माना जाता था।
और इसी दोहरी जिंदगी के बीच कहानी में एक भूचाल आता है। एक रात जेम्स अपनी मालकिन मिस वॉटसन को बात करते हुए सुन लेता है।
क्या सुन लेता है?
वो उसे $800 में न्यू ऑर्लियंस के एक व्यापारी को बेचने का सौदा कर रही है। ये सुनते ही जेम्स के मतलब पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
क्योंकि न्यू ऑर्लियंस उसका मतलब था अपने परिवार का अंत।
हाँ, उसके पत्नी सैंडी और बेटी लिजी से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाना, ये तो मौत से भी बदतर सजा थी।
और यहीं पर ये उपन्यास हकलबेरी फिन की कहानी से बिल्कुल अलग हो जाता है। ये किसी लड़के के एडवेंचर की कहानी नहीं रह जाती।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक पिता की कहानी है जो अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।
एवरेट यहाँ आज़ादी के बहुत गहने मतलब तलाशते हैं ना। उस इंसान के लिए आज़ादी क्या है जिसे कानूनन किसी की संपत्ति माना जाता है?
और एक ऐसी दुनिया में प्यार और परिवार को कैसे बचाया जाए जो इन्हें तोड़ने के लिए ही बनी है।
और इसी सवाल के जवाब में हमें कहानी का नायक मिलता है, जेम्स।
हाँ, वो एक दार्शनिक है, एक रणनीतिकार है, और सबसे बढ़कर एक प्यार करने वाला पति और पिता है। अब कहानी का हर कदम, हर फैसला उसके इसी प्यार से तय होता है।
और इसी वजह से हकलबरी हक फिन, जो ट्वेन की किताब का हीरो था, वो यहाँ एक सहायक पात्र बन जाता है।
हाँ, हम उसे जेम्स के समझदार और कभी कभी दया भरी नजरों से देखते हैं। हक दिल का अच्छा लड़का है, पर वो भी अपने समाज की नस्लवादी सोच से अछूता नहीं है।
जेम्स उसे एक बच्चे की तरह देखता है जिसे दुनिया के जहर से बचाने की जरूरत है।
और खलनायक भी बदल जाते हैं, सिर्फ बुरे लोग विलन नहीं है,
बल्कि दास्ता की पूरी व्यवस्था ही खलनायक है। मिस वॉटसन को ही देखिए, वो खुद को एक अच्छी उदार मालकिन समझती है।
ये बात बहुत दिलचस्प है, उदार चेहरा मतलब, क्या वो सोचती है कि वो जेम्स के साथ अच्छा बर्ताव कर रही है?
हाँ, वो उसे पढ़ना लिखना सिखाने की बात करती है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो उसके परिवार को तोड़ने में एक पल भी नहीं हिचकिचाती।
ये उस दोगलेपन को दिखाता है जो कहता है, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, लेकिन याद रखना तुम मेरी संपत्ति हो।
और ये शायद सबसे खतरनाक किस्म का नस्लवाद है जो दया का मुखौटा पहने रहता है।
और फिर है द ड्यूक और द किंग जैसे धोखेबाज। ट्वेन के उपन्यास में वो थोड़े मजाकिया लगते हैं, लेकिन जेम्स की आंखों से देखने पर उनका असली घिनौना चेहरा सामने आता है।
जेम्स उन्हें देखते ही समझ जाता है कि ये सिर्फ ठग नहीं है, ये उस समाज की नैतिक सड़न की जीती जागती मिसाल है।
तो इस खतरनाक दुनिया में जब जेम्स को पता चलता है कि उसे बेचा जाने वाला है, वो एक ऐसा कदम उठाता है जो उसकी बुद्धि और जीने की जिद दोनों को दिखाता है।
वो भागने की योजना बनाता है।
हाँ, लेकिन ये कोई आम योजना नहीं है। वो एक सुअर को मारकर उसके खून से अपनी झोपड़ी में अपनी ही हत्या का एक खौफनाक मंजर तैयार करता है।
क्या? अपनी हत्या का?
हाँ, दीवार पर खून के छींटे, जमीन पर घसीटने के निशान, ताकि सब यही समझें कि उसे मार दिया गया है और कोई उसका पीछा ना करे।
क्या कमाल की रणनीति है। मतलब उसने अपनी मौत का नाटक किया ताकि वो सच में जी सके। ये तो एक शक्तिशाली प्रतीक है।
बिल्कुल। इसके बाद वो पास के जैक्सन आइलैंड पर छिप जाता है और वहीं उसकी मुलाकात हक से होती है, जो अपने शराबी और हिंसक पिता से भाग कर आया है।
दोनों की जरूरतें अलग हैं, लेकिन मजबूरी एक ही है।
हाँ, और दोनों मिलकर एक बेड़ा, एक राफ्ट बनाते हैं जो मिसिसिपी नदी पर उनकी आजादी की नाव बन जाता है।
और वो बेड़ा नदी के बीच में एक अलग ही दुनिया बन जाता है ना, समाज के नियमों से दूर,
जहाँ एक भगोड़ा दास और एक सफेद लड़का दोनों बराबर हैं, एक दूसरे के साथी हैं।
और इसी सफर में एक पल आता है जो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए तय कर देता है। उन्हें नदी में तैरता हुआ एक घर मिलता है जिसके अंदर एक लाश है।
और वो लाश,
वो हक के पिता का शव है।
जेम्स ये पहचान जाता है, लेकिन वो हक को अंदर देखने से रोक देता है। वो उस बच्चे को उस भयानक दृश्य से बचाता है, एक पिता की तरह।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। समाज उन्हें मालिक और संपत्ति की नजर से देखता है, लेकिन उस बेड़े पर जेम्स हक का रक्षक बन जाता है। पर ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। क्यों?
नहीं, जल्दी उनकी छोटी सी दुनिया में द ड्यूक और द किंग का जहर घुल जाता है। जेम्स उनकी असलियत पहली नजर में ही भांप लेता है। वो मन ही मन उनकी हर चाल का विश्लेषण करता है, लेकिन बाहर से उसे वही भोले जिम का नाटक करना पड़ता है।
हाँ, और फिर आता है कहानी का सबसे तकलीफ दे मोड़।
सिर्फ $40 के लिए ड्यूक जेम्स के साथ धोखा करता है और उसे फेल्प्स परिवार को बेच देता है।
और यहां हम उपन्यास के उस हिस्से में पहुंचते हैं जो ड्वेन की मूल कहानी पर सबसे तीखा और शक्तिशाली प्रहार है।
हाँ, ये एक तरह से किताब का दिल है, जहां एवरेट का गुस्सा और दर्द सबसे साफ नजर आता है।
जेम्स को पकड़कर जंजीरों में बांध दिया जाता है एक अंधेरी झोपड़ी में,
और तभी वहां टॉम सॉयर की एंट्री होती है, जो फेल्प्स परिवार का भतीजा है।
हक तो एक सीधी सादी योजना बनाकर जेम्स को छुड़ाना चाहता है,
लेकिन टॉम सॉयर, जिसके दिमाग पर रोमांचक किताबों का नशा छाया हुआ है, इस पूरी स्थिति को एक खेल में बदल देता है।
एक मिनट, मुझे ये समझना है, टॉम सॉयर तो बच्चों की कहानियों का हीरो है, एवरेट उसे यहाँ एक विलन की तरह क्यों दिखा रहा है? ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। यही तो एवरेट की सबसे बड़ी कला है। वो हमें दिखाता है कि जिसे हम मासूमियत या बचपना कहते हैं, वो जब सत्ता के साथ मिल जाए तो कितनी क्रूर हो सकती है।
टॉम एक बेतुकी और खतरनाक पलायन की योजना बनाता है। वो जेम्स को मजबूर करता है कि वो एक चम्मच से सुरंग खो दे।
हे भगवान।
अपने खून से एक डायरी लिखे और अपनी झोपड़ी में सांप और चूहे पाले।
मतलब एक आदमी जो सच में अपनी जान बचाने के लिए भागा है, उसे एक झूठे रोमांच के लिए फिर से उन्हीं तकलीफों से गुजरने पर मजबूर किया जा रहा है।
बिल्कुल, जेम्स के लिए भयानक यातना है। वो हर पल पकड़े जाने, मारे जाने के डर में जी रहा है, और ये लड़के उसकी जिंदगी और मौत के संघर्ष को अपना खेल समझकर मजा ले रहे हैं।
जेम्स का आंतरिक मोनोलॉग, मतलब उसके मन की आवाज, इन दृश्यों में गुस्से, बेबसी और इस बेतुकेपन पर अविश्वास से भरी हुई है।
ये उस मानसिकता पर एक गहरा कटाक्ष है जो एक अश्वेत व्यक्ति के दर्द को मनोरंजन का समान समझती है।
ये दिखाता है कि कैसे सबसे भयानक क्रूरता जरूरी नहीं कि नफरत से पैदा हो, वो कभी कभी घोर असंवेदनशीलता से भी पैदा होती है।
हाँ, टॉम जेम्स को एक इंसान के तौर पर देख ही नहीं पा रहा। उसके लिए वो अपनी कहानी का एक किरदार मात्र है।
और इस तथाकथित पलायन का अंत भी उतना ही बेतुका होता है।
हाँ, योजना के दौरान भगदड़ मचती है, टॉम के पैर में गोली लग जाती है और सारा नाटक खुल जाता है। और तभी ये खुलासा होता है कि मिस वॉटसन की तो 2 महीने पहले ही मौत हो चुकी है।
क्या?
और वो अपनी वसीयत में जेम्स को आज़ाद कर गई थी। ये सारा तमाशा पूरी तरह से व्यर्थ था।
तो जेम्स अब कानूनी तौर पर आज़ाद है। कहानी का एक सुखद अंत होना चाहिए था, है ना?
यहीं पर एवरेट एक और दांव खेलते हैं। कानूनी आज़ादी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। जेम्स के लिए असली आज़ादी का मतलब है अपने परिवार के साथ होना।
और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी और बेटी को कहीं और बेच दिया गया है, वो पूरी तरह बदल जाता है।
मतलब वो अब एक निष्क्रिय शिकार नहीं रहता।
बिल्कुल नहीं, वो अब शिकारी बन जाता है। वो नियंत्रण अपने हाथों में ले लेता है। अपनी बुद्धि और शारीरिक बल का इस्तेमाल करके वो उन लोगों को मात देता है जो उसे पकड़ने आते हैं।
वो अब भागा हुआ दास नहीं है, वो एक मिशन पर निकला एक आजाद आदमी है, अपने परिवार को ढूंढना और उन्हें छुड़ाना।
तो उपन्यास किसी सुकून भरे अंत पर नहीं, बल्कि एक नए उद्देश्यपूर्ण और खतरनाक संघर्ष की शुरुआत पर खत्म होता है।
और यहाँ स्वतंत्रता की परिभाषा ही बदल जाती है। हमें लगता है आज़ादी मतलब जंजीरों का टूटना,
लेकिन एवरेट कहते हैं नहीं, असली आज़ादी तब है जब आप अपने परिवार को बचाने की ताकत रखते हैं। इस नज़रिए से देखें तो क्या जेम्स आखिर में भी पूरी तरह आज़ाद हो पाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो किताब अपने पीछे छोड़ जाती है।
ये पूरी किताब जेम्स को उसकी इंसानियत वापस लौटाने की कोशिश है। लेखक जिम की उस दबी कुचली छवि को तोड़कर एक जटिल, बुद्धिमान और भावुक इंसान जेम्स को हमारे सामने लाते हैं।
और इस पूरी कहानी को जेम्स के नज़रिए से, यानी फर्स्ट पर्सन में कहना, ये लेखक का सबसे प्रभावशाली फैसला है। हम दुनिया को उसकी आंखों से देखते हैं, उसके डर को महसूस करते हैं, उसकी रणनीतियों को समझते हैं।
हम सिर्फ कहानी पढ़ नहीं रहे होते, हम जेम्स के दिमाग के अंदर जी रहे होते हैं। प्रतीक भी बहुत शक्तिशाली हैं। मिसिसिपी नदी आज़ादी का रास्ता भी है और खतरों से भरी हुई भी।
वो बेड़ा एक छोटी सी आदर्श दुनिया है जो बाहरी समाज के भ्रष्टाचार से पल भर में दूषित हो जाती है।
और सबसे बढ़कर जेम्स नाम, शीर्षक से ही लेखक साफ कर देते हैं कि ये उस इंसान की कहानी है जिसे दुनिया ने जिम का लेबल दिया था, लेकिन जिसकी असली पहचान, उसका असली वजूद जेम्स है।
तो अंत में, ये उपन्यास सिर्फ एक क्लासिक का पुनर्लेखन नहीं है, ये इतिहास के साथ एक संवाद है। ये हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम किसकी कहानियां सुनते हैं
और किसकी आवाजों को अनसुना कर देते हैं।
जेम्स हमें उन गड़े हुए मिथकों पर सवाल उठाने और उस इंसानियत को देखने के लिए मजबूर करता है जिसे जानबूझकर भुला दिया गया था।
यह हमें याद दिलाता है कि हर कहानी का एक और पहलू होता है जो अक्सर ज्यादा सच्चा और ज्यादा जरूरी होता है। यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।